मुझे याद आया कि जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ था तो हम हर हफ्ते उनकी कब्र पर जाया करते थे, फिर हर महीने में एक बार, और फिर हम उन्हें भूल गए। जब मैं जिंदा था तो मुर्दों को भूल जाता था, लेकिन आज मैं खुद इस हालत को पहुंच चुका हूँ। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए और मेरी मदद के लिए कोई ना था, सिवाय चंद नेक आमाल के जो मुझे पहुँचते थे, या मेरे वालिद, भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों का मेरी कब्र पर आना, जो रफ्ता रफ्ता कम हो गया। ज़्यादातर मुझे अपनी वालदा की दुआ पहुँचती रही, जो वो तहज्जुद में मेरे लिए करती रही। बखुदा वो दुआ मेरे लिए तमानियत का बायस होती थी। नेक आमाल का आना कम होता चला गया, ना मालूम क्या वजह थी कि सूरतुल मुल्क का आना भी बंद हो गया। मेरी कब्र में फिर अंधेरा छा गया। मुझे बास गुना याद आए जो मैंने किए थे। एक एक दिन और एक एक घड़ी याद आ रही थी। मुझे अपने गुनाह पहाड़ के बराबर लग रहे थे। अपने आप को मलामत कर रहा था, कितने गुनाह हैं जो मैंने बड़ी दलेरी से किए हैं, कितनी नमाजें हैं जो मेरी फौत हो गई हैं, कितनी फजर की नमाजें हैं जो मैंने गफलत की वजह से नहीं पढ़ी हैं। ये सारे गुनाह याद करके मैं इतना रोया कि मुझे वक्त का चूंकि अंदाज़ा नहीं था, इसलिए अगर मैं कह दूँ कि महीनों रोया होगा तो मुबालगा नहीं होगा। एक दिन अचानक ऐसी रोशनी आई जैसे सूरज निकल चुका हो। मैंने फरिश्तों की आवाज़ें सुनी कि वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है कि मेरे पास सूरत मुल्क आई और खुशखबरी सुना दी। सूरत मुल्क ने बताया कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया और ये रहमत और माफ़ी का महीना है, और इसमें बहुत सारे मुर्दे मुसलमानों की दुआओं की बरकत से निजात पा लेते हैं। मैं बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला इंसानों पर कितना मेहरबान है, लेकिन इंसान है कि गुमराही पर तुला हुआ है। सूरत मुल्क ने बताया कि अल्लाह ताला किसी को आग में नहीं डालना चाहता, लेकिन ये इंसानों की अपनी हमाकत होती है कि वो ऐसे गुनाह कर जाते हैं जो इनकी सज़ा का मूजब बनते हैं। फिर इसने कहा, अब थोड़ी देर बाद मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और तुम इनकी आवाज़ें सुनोगे। सूरतुल मुल्क चली गई और मेरी कब्र में बदस्तूर रोशनी थी, और मैंने पहली बार मस्जिद से आने वाली आवाज़ सुन ली। अपनी ज़िंदगी को याद किया और तरावीह को याद किया तो बहुत रोया। मैंने सुना कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर मैंने इमाम की दुआ सुन ली कि वो पढ़ रहा था, अल्लाहुम्मा ला तदा लना फी मकामिना हाज़द दुनिया इल्ला गफरतहू वला हम्मन इल्ला फर्रजतहू वला मैतन इल्ला रहमतहू। इस दुआ से मुझे बहुत सुकून मिला और मैंने तमन्ना की कि इमाम दुआ को तूल दे दें। फिर इमाम ने कहा, अल्लाहुम्मा रहम मौताना वानज़िल अला कुबूरिहिम अल्फसहत वस्सुरूर। मैंने महसूस किया कि वो दुआ सीधी कबूल हो रही है, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी खुशी और राहत मिल रही थी। मैं रोता जा रहा था और साथ साथ आमीन पढ़ता जा रहा था। इसी तरह रमज़ान का सारा महीना बहुत सुकून और राहत से गुजरा, और फिर एक दिन मेरी कब्र में इंसान की शक्ल का एक आदमी आया जिससे बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। मैं हैरान हुआ क्योंकि मरने के बाद ये पहला इंसान था जो मैं देख रहा था। इसने मुझे सलाम किया और मैंने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। इसने कहा, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए। मैंने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप कौन हैं? मैं पहली दफ़ा कब्र में इंसान की शक्ल देख रहा हूँ। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने पूछा, तो क्या फरिश्ते हैं? बोला, नहीं, मैं दरअसल तुम्हारा नेक अमल हूँ। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, हज, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, बर्रम बिवालिदैन यानी बिर्रुल वालिदैन वगैरह वगैरह, इसको अल्लाह ताला ने एक शक्ल में तुम्हारे पास भेजा है। मैं बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने पूछा, तुम इतने लेट क्यों आए हो? इसने कहा कि तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे कर्जे मेरी राह में रुकावट थे, और जब अल्लाह ताला ने माफ़ी का ऐलान कर दिया तो मेरे लिए रास्ता खुल गया। मैंने पूछा, तो क्या इसके मानी ये है कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे देगा? हसरत को महसूस कीजिए। इसने कहा कि ये बात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर इसने कहा, क़यामत के दिन मीज़ान से तुम्हारी जन्नत और दोज़ख जाने का पता चलेगा। इसके बाद अमल साले ने कहा कि तुम्हारे कुछ नेक आमाल बिल्कुल ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों में आ गए। मैंने पूछा, वो क्या हैं? उसने कहा, अगर तुम्हें याद हो तो मरते वक्त अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दी और तुमने कलमा शहादत पढ़ा था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि फ़रिश्तों को कितनी खुशी हुई कि तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा तौहीद पर हुआ, जबकि शैतान तुम्हें नसरानियत और यहूदियत की तलकीन कर रहा था। उस वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द दो किस्म के फरिश्ते मौजूद थे, एक वो जो मुसलमानों की रूहें कब्ज़ करते हैं और कुछ वो जो काफिरों की रूहें कब्ज़ करते हैं। जब तुमने कलमा पढ़ा तो वो फरिश्ते चले गए जो काफिरों की रूहें कब्ज़ करते हैं, और वो ठहर गए जो मुसलमानों की रूहें कब्ज़ करते हैं, और फिर उन्होंने तुम्हारी रूह कब्ज़ कर ली। मैंने पूछा, इसके अलावा भी कोई नेकी है? उसने कहा, हाँ, जब तुमने ड्राइवर को सिगरेट छोड़ने की नसीहत की तो आज जो खुशबू तुम सूंघ रहे हो इस नसीहत की बदौलत है। इसके अलावा अपनी वालदा को तुम्हारी कॉल और इसके साथ जो भी तुमने बातें की, अल्लाह ने हर बात के बदले तुम्हारे लिए नेकियां लिख दी। मुझे याद आया, जो बातें मैंने वालदा से की थी, मुझे पता होता तो मैं इन बातों में घंटा लगा देता। फिर अमल सालेह ने बताया कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त में एक गुनाह भी तुम्हारे खाते में लिखा गया। मैं हैरान हुआ और पूछा, मतलब वो कैसे? बोला, तुमने बच्ची से कहा मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, इस तरह तुमने उसे झूठ बोल दिया। काश मरने से पहले तुम तौबा कर लेते। यानी इरादा तो नहीं था ना आने का, वो तो रियास जा रहा था, लेकिन बच्चे से झूठ बोल दिया। काश तुम मरने से पहले तौबा कर लेते। मैं रोया। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा इरादा झूठ का नहीं था, बल्कि मेरा ख्याल ये था कि इस तरह वो मेरे आने तक सब्र कर लेगी। इसने कहा, जो भी हो, आदमी को सच बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सच्चे लोगों को पसंद करता है और झूठ बोलने वालों को नापसंद करता है, लेकिन लोग इसमें बहुत तसाहुल बरतते हैं। फिर इसने कहा, तुम्हारी वो बात भी गुनाह के खाते में लिख दी गई है जो तुमने एयरपोर्ट में काउंटर पर बैठे हुए शख्स से कह दी कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब कर दे। इस तरह तुमने एक मुसलमान का दिल दुखाया। मैं हैरान हो गया कि इतनी मामूली बातें भी सवाब और गुनाह का बाइस बनती हैं। अमल सालेह ने बताया कि ये इंसानों पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जब वो एक नेकी करें तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बल्कि 700 गुना बढ़ा देता है, और बेहतरीन आमाल वो हैं जो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हैं। मैंने कहा, 5 वक्त की नमाज के बारे में क्या है? अमल साले ने कहा कि नमाज, ज़कात, स्याम, हज वग़ैरह तो फ़राइज हैं, मैं इनके अलावा भी तुम्हें ऐसे आमाल बता दूँगा जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। मैंने कहा, वो क्या हैं? बोला, तुम्हारी उम्र जब 20 साल की थी तुम उम्रे के लिए रमज़ान के महीने में गए थे, तुमने वहाँ 100 रियाल की इफ्तारी खरीद कर लोगों में बांट दी, इसका बहुत अजर तुमने कमाया। इसी तरह एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाया था, वो बूढ़ी एक नेक औरत थी, इसने तुम्हें जो दुआएं दी हैं इसके बदले अल्लाह ने तुम्हें बहुत नेकियां और अजर दिया है। मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, एक बार तुम मदीना जा रहे थे कि रास्ते में तुम्हें एक आदमी खड़ा हुआ मिला जिसकी गाड़ी ख़राब हुई थी, तुमने इसकी जो मदद की, अल्लाह ताला को तुम्हारी वो नेकी बहुत पसंद आई और तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर मिला है। इसके बाद मेरी कब्र खुल गई और इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी आ गई और फरिश्तों के गिरोह दर गिरोह आते हुए नज़र आए। अमल साले ने कहा कि आज लैलतुल क़द्र है, इसलिए ये रोशनी है। अब आप सोचेंगे कि ये सारी बातें कैसे हुई। एक मरने वाला जो मरा, वो ये सारी बातें हमें कैसे बता रहा है? अब इस कहानी का ड्रॉप सीन है। असल में ये एक फर्जी कहानी है। ये कहानी इबरत के लिए लिखी गई है, लेकिन अहादीस के बयान के मुताबिक क्या इस कहानी के सुनने के बाद भी हम आखिरत के लिए फ़िक्रमंद नहीं होंगे? क्या इस कहानी के बाद भी हम गुनाह करेंगे? क्या इस कहानी के सुनने के बाद भी हम फजर की नमाज से गैर हाजिर होंगे? क्या जमात की ज़िंदगी हमारे लिए बायस रहमत नहीं है, जहाँ वक्तन फवक्तन इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं? अकूल क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। तो बात यह है कि ये तो एक कहानी थी, ये तो एक ख्वाब था और उसको हकीकत का रूप दिया गया, लेकिन हमारे पास तो दुनिया के सबसे सच्चे इंसान और सब सच्चों के रब अल्लाह की ज़ात की किताब मौजूद है। हम तो वो कुरान पढ़ने वाले हैं, हम तो ये किताब पढ़ाने वाले हैं। हमें इस कहानी को सुनकर जितना यकीन आया, जो कहानी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई बात भी ऐसी नहीं कि जो कुरान और सुन्नत से मुख्तलिफ हो, तो सोचिए कि जब ये पूरा कुरान हम पढ़ लेंगे और हदीस हमारे सीने में होगी, तो फिर अल्लाह का डर कितना होना चाहिए। कहानी के एंड पर यही दावत दूंगी कि आज ही नियत कीजिए कि दुनिया की सबसे सच्ची किताब ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसको पढ़ूंगी। मुझे बीच में बहुत सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन मैंने कहानी को कहानी की तरह सुनाना चाहा, रोका नहीं बीच में, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता लग जाए कि मरने के बाद मर्दों के साथ क्या होता है, तो तुम उनको दफन करना छोड़ दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दिलों को खोल दे। लतर कबुन न तबकन अन तबक, यह आयत भी मुझे बारहा याद आई बीच में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम दर्जा बदरजा उतरोगे, एक दर्जे से दूसरे, दूसरे से तीसरे। और मैं पढ़ते हुए सोच रही थी कि किस तरह से हमारे साथ भी तो ये होने वाला है। हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो कुछ करते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं आता। सबकी मौत का यकीन है अपनी मौत के सिवा, हर एक का हिसाब लेने को दिल चाहता है अपना हिसाब देने के सिवा। कैसे कर्जों के बोझ में जकड़े रहते हैं, कैसे इंसानी मामलात में छोटी छोटी कोताहियां करते हैं, कैसे हम बचपन जवानी की बातों को भूल चुके हैं, लेकिन अल्लाह जो सरीउल हिसाब है उसको कुछ नहीं भूलेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए अमल करना आसान कर दे। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह ताला हमें मैदान महशर पुल सरात और एक एक मरहले में सुरखरू कर दे। इससे कोई गरज नहीं कि दुनिया में लोग हमें क्या कहें, अल्लाह से दुआ है कि उसकी नज़रों में बड़े बन जाएं, वहाँ अच्छा मुकाम मिल जाए। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ करे। आज ही अपनी वसीयत लिखने की और अपना मुहासबा करने की कोशिश करें। जिसका देना लेना है, आज सोने से पहले कुछ ना कुछ अमली कदम उठा लें और अल्लाह से भी कहते हैं कि हमारी बशरी ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह के हकूक़ और बंदों के हकूक़ में जहाँ कमी बेशी हुई है, अल्लाह हमारी बख्शिश का कोई सबब बना दे, और ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हम खड़े रहें और हशर के दिन नशर हो जाएं। जो भी अगले पिछले गुनाह अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह हमें कब्र की घुटन से बचाए। अल्लाह हमें सूरतुल मुल्क को हर रोज़ पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह हमें अपने वादों पे यकीन दिला दे। हम अल्लाह के वादों को ऐसे माने जैसे हम लोगों की कही हुई बातों को मानते। दुनिया में किसी मुल्क में किसी कानून में कोई बात लिखी हो सही और हम उस पे आ जाएं, तो हम मनवाते हैं जी कि आपके कानून में ये लिखा है, मनवा के छोड़ते हैं। दुनिया के कानून बनाने वालों को अपनी बात का इतना मान है, तो क्या अल्लाह अपनी बात को पूरा नहीं करेगा? फिर पुलसरात और कब्र और हशर के मराहल, क्या ये सिर्फ़ एक धोखा है? नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं। اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کروں گی کہ اس کہانی میں جہاں کوئی کمی بیشی ہو گئی, میں نے تو اس کو من و ان پڑھ کے سنا دیا, لیکن کوئی بات جو قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی تھی اللہ تعالی لکھنے والے کی بھی اصلاح فرما دے اور مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی فرمائے. تذکیر ہے, نصیحت ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ جھوٹی کہانیوں کو چھوڑ کر سچ پہ آ جائیں, اسی سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.